नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। द फॉरगॉटन मैन, अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, अमेरिकी लेखिका एमिटी श्लेस की आर्थिक और राजनीतिक इतिहास की पुस्तक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की महामंदी को मुक्त बाजार समर्थक दृष्टिकोण से फिर से परखती है। पुस्तक का केंद्रीय प्रश्न यह नहीं है कि संकट कितना गहरा था, बल्कि यह है कि वह असाधारण रूप से लंबे समय तक क्यों चला। श्लेस का तर्क है कि हर्बर्ट हूवर और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट दोनों ने सरकारी हस्तक्षेप, अनिश्चित नियमों, करों, संरक्षणवाद और प्रयोगधर्मी नीतियों के माध्यम से आर्थिक सुधार को कठिन बनाया। शीर्षक का फॉरगॉटन मैन उन लोगों का प्रतीक है जो करों का भार उठाते हैं, स्थायी काम से वंचित रहते हैं या नीति निर्माण में जिनकी लागत अनदेखी हो जाती है। पुस्तक न्यू डील की पारंपरिक प्रशंसात्मक व्याख्या को चुनौती देती है और व्यवसाय, निवेश, श्रम तथा लोकतांत्रिक राजनीति के संबंधों को केंद्र में रखती है। यह एक विवादास्पद संशोधनवादी इतिहास है, इसलिए इसे स्थापित आर्थिक इतिहास के निष्कर्षों के साथ संवाद में पढ़ना सबसे उपयोगी रहता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, फॉरगॉटन मैन का अर्थ राहत पाने वाले नहीं बल्कि लागत उठाने वाले नागरिक। श्लेस फॉरगॉटन मैन की धारणा को पुस्तक का नैतिक और विश्लेषणात्मक केंद्र बनाती है। उनके लिए यह केवल बेरोजगार व्यक्ति नहीं है, इसमें वो कर्मचारी भी शामिल है जिसकी नौकरी अस्थायी सार्वजनिक काम से स्थिर नहीं होती। वह छोटा उद्यमी भी जो बदलते नियमों और करों से दबता है, और वह करदाता भी जो राहत योजनाओं की कीमत चुकाता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य न्यू डील को केवल लाभार्थियों की संख्या या घोषित मानवीय उद्देश्यों से न आंकना है। श्लेस पूछती है कि किसी नीति का खर्च किसने उठाया, उससे निजी रोजगार और निवेश पर क्या असर पड़ा, तथा क्या राहत ने आत्मनिर्भर आर्थिक अवसर पैदा किए। यह फ्रेम नीति के प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लागत के बीच अंतर को उभारता है। पुस्तक का तर्क है कि सरकार जब एक समूह को सहायता देती है, तब दूसरे समूह की पूंजी, विकल्प और सुरक्षा घट सकती है। इसीलिए लेखक बेरोजगारी के आंकड़ों में अस्थायी आपातकालीन काम को स्थायी नौकरी मानने पर भी संदेह करती है। आलोचक इस परिभाषा और आंकड़ों के चयन को विवादित मानते हैं, लेकिन पुस्तक का स्थायी योगदान यह है कि वह संकट नीति के मूल्यांकन में उन नागरिकों को शामिल करने पर जोर देती है जिनकी आवाज अक्सर राजनीतिक कहानी में दब जाती है। दूसरा, हूवर और स्मूथ-हॉली टैरिफ, निष्क्रियता की प्रचलित छवि पर प्रश्न। महामंदी की लोकप्रिय कथा में हर्बर्ट हूवर को अक्सर निष्क्रिय राष्ट्रपति और रूजवेल्ट को सक्रिय सुधारक के रूप में रखा जाता है। श्लेस इस सरल विरोध को अस्वीकार करती हैं। उनके अनुसार हूवर प्रशासन ने मजदूरी, उद्योग और व्यापार को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त हस्तक्षेप किया
और उसकी नीतियों ने संकट के दौरान समायोजन को आसान नहीं बनाया। पुस्तक विशेष रूप से स्मूथ-हॉली टैरिफ को महत्वपूर्ण मानती है, जिसने आयात पर शुल्क बढ़ाए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक तनाव को तीव्र किया।
जब दूसरे देशों ने जवाबी शुल्क लगाए तो अमेरिकी निर्यातकों, किसानों और व्यापारिक भागीदारों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। श्लेस का व्यापक बिंदु यह है कि संरक्षणवाद केवल घरेलू उद्योग को बचाने का साधन नहीं रहता, क्योंकि वैश्विक प्रतिशोध घरेलू उत्पादन और रोजगार को भी चोट पहुंचा सकता है। हूवर की समीक्षा के जरिए वह ये दिखाती हैं कि न्यू डील से पहले ही संघीय सरकार आर्थिक दिशा तय करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए पुस्तक महामंदी को बाजार की स्वचालित विफलता और फिर सरकारी उद्धार की दो चरणीय कहानी नहीं मानती। यह नीति की निरंतरता पर ध्यान देती है। फिर भी टैरिफ और हूवर की नीतियों की सापेक्ष भूमिका पर आर्थिक इतिहासकारों में मतभेद है।
पाठक को श्लेस की व्याख्या को एक प्रभावशाली पर बहस योग्य दृष्टिकोण समझना चाहिए। तीसरा, न्यू डील की अनिश्चितता, निवेश और निजी रोजगार पर श्लेस की आपत्ति। पुस्तक की सबसे प्रमुख दलील यह है कि रूजवेल्ट की न्यू डील ने विश्वास बहाल करने के बजाय अनेक क्षेत्रों में अनिश्चितता बढ़ाई। श्लेस के अनुसार उद्योग, बैंकिंग, कृषि, श्रम और कर व्यवस्था में लगातार नए नियम, प्रशासनिक प्रयोग तथा राजनीतिक दबाव थे। किसी व्यवसाय के लिए निवेश का निर्णय केवल मांग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि इस अनुमान पर भी निर्भर करता है कि संपत्ति, कीमत, मजदूरी, कर और अनुबंध के नियम कितने स्थिर रहेंगे। लेखक का तर्क है कि जब ये अपेक्षाएं धुंधली हों, तो कंपनियां विस्तार, भर्ती और दीर्घकालिक निवेश रोक सकती हैं। वह न्यू डील की ऐसी योजनाओं को संदेह से देखती हैं जिनमें सरकार ने उत्पादन, प्रतिस्पर्धा या श्रम संबंधों में व्यापक भूमिका ली।
इस विश्लेषण में आर्थिक पुनरुद्धार का माप केवल राहत वितरण नहीं बल्कि टिकाऊ निजी रोजगार और निवेश है। श्लेस रूजवेल्ट की सार्वजनिक भाषा, विशेषकर व्यवसाय और धन के प्रति टकरावपूर्ण संकेतों को भी आर्थिक वातावरण का हिस्सा मानती हैं। उनका मानना है कि नीति और वक्तव्य मिलकर जोखिम की धारणा बदलते हैं। इस निष्कर्ष पर गंभीर विवाद है। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि न्यू डील ने राहत, संस्थागत सुरक्षा और मांग को सहारा दिया, जबकि अपर्याप्त राजकोषीय विस्तार सुधार को सीमित करता रहा। पुस्तक का महत्व इस विवाद को दबाने में नहीं, बल्कि पुनरुद्धार के लिए नियमों की विश्वसनीयता और निवेशकों की अपेक्षाओं को केंद्रीय प्रश्न बनाने में है। चौथा, मंदी की अवधि का प्रश्न और रोजगार के आंकड़ों की व्याख्या। श्लेज की जांच का मुख्य आधार महामंदी की लंबी अवधि है। यदि न्यू डील निर्णायक आर्थिक उपचार थी, तो फिर पूरे दशक में बेरोजगारी और असुरक्षा इतनी लंबे समय तक क्यों बनी रही, यह उनका प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में वह सरकारी कार्य योजनाओं से मिले अस्थायी रोजगार और सामान्य अर्थव्यवस्था में बने स्थायी काम के बीच अंतर करती हैं। लेखक ने रोजगार संबंधी अपने आकलनों के लिए उस सांख्यिकीय परंपरा का उपयोग किया, जिसमें आपातकालीन अल्पकालिक सार्वजनिक कामों को नियमित रोजगार के बराबर नहीं माना गया। उनका तर्क है कि अस्थायी काम आय तो दे सकता है, पर वह व्यक्ति को दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा और सामान्य श्रम बाजार में वापसी की गारंटी नहीं देता। यह अंतर अवधारणात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग परिभाषाएं एक ही नीति की सफलता के अलग चित्र बना सकती हैं। पर यही पुस्तक की सबसे चर्चित सीमाओं में भी है। आलोचकों, जिनमें पॉल क्रुगमैन शामिल है, ने कहा कि श्लेज आंकड़ों और राजकोषीय प्रोत्साहन की भूमिका को भ्रामक ढंग से प्रस्तुत करती है। उनका प्रतितर्क है कि 30 के दशक में पर्याप्त बड़े पैमाने का प्रोत्साहन वास्तव में आजमाया ही नहीं गया, इसलिए पुस्तक को आंकड़ों की अंतिम निर्णायक व्याख्या नहीं मानना चाहिए। इसके बजाय यह सिखाती है कि रोजगार, राहत और पुनरुद्धार जैसे शब्दों की परिभाषा जांचे बिना किसी ऐतिहासिक नीति पर निष्कर्ष निकालना जोखिमपूर्ण है। अंत में वेंडल विल्की और सीमित सरकार का वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण, श्लेज की कथा केवल हूवर और रूजवेल्ट की आलोचना तक सीमित नहीं रहती। वह 1940 के चुनाव में वेंडल विल्की को एक वैकल्पिक राजनीतिक और आर्थिक संभावना के रूप में प्रस्तुत करती है। विल्की का महत्व इस बात में है कि उन्होंने न्यू डील की व्यापकता पर प्रश्न उठाया, निजी उद्यम की भूमिका पर बल दिया और राज्य तथा नागरिक के बीच अलग संतुलन की बात की। श्लेज के लिए विल्की उस विचार के प्रतिनिधि हैं कि आर्थिक पुनरुद्धार का टिकाऊ आधार सरकार द्वारा अधिक कार्यक्रम चलाना नहीं, बल्कि नागरिकों और व्यवसायों को अपेक्षाकृत स्पष्ट नियमों के भीतर काम करने देना है। इस चित्रण में राजनीतिक विपक्ष केवल नकारात्मक प्रतिरोध नहीं, बल्कि नीति का वैकल्पिक ढांचा बन जाता है। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि यूरोप में बढ़ते युद्ध संकट ने घरेलू आर्थिक बहस और रूजवेल्ट की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया। इस कारण चुनावी सफलता को केवल आर्थिक नीति की स्वीकृति मानना भ्रामक हो सकता है। फिर भी विल्की को पुस्तक में दिया गया केंद्रीय स्थान लेखक की वैचारिक प्राथमिकताओं को भी दिखाता है। हर इतिहासकार यह नहीं मानेगा कि न्यू डील को घटाना उस समय का व्यावहारिक या पर्याप्त समाधान होता, लेकिन यह अध्याय उपयोगी है, क्योंकि यह याद दिलाता है कि इतिहास में लागू नीति के साथ उन विकल्पों को भी देखना चाहिए जो पराजित हुए, भले ही वे लागू नहीं हो सके। निष्कर्ष में द फॉरगॉटन मैन उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो महामंदी और न्यू डील की परिचित कहानी के बाहर एक गंभीर मुक्त बाजार समर्थक व्याख्या पढ़ना चाहते हैं। आर्थिक इतिहास सार्वजनिक नीति, कराधान, व्यापार और सरकारी हस्तक्षेप के दीर्घकालिक प्रभावों में रुचि रखने वाले पाठक इससे बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। सार्वजनिक नीति और इसकी व्यावहारिक बौद्धिक उपयोगिता इस बात में है कि यह किसी भी संकट नीति पर कुछ कठिन प्रश्न लगाने की आदत विकसित करती है। लाभ किसे मिला, लागत किसने चुकाई, रोजगार अस्थायी था या टिकाऊ, और क्या नियमों की अनिश्चितता ने निजी निर्णयों को रोका। पुस्तक सामान्य इतिहासों से इसलिए अलग दिखती है कि वह रूजवेल्ट को निर्विवाद उद्धारक और हूवर को पूर्ण निष्क्रियता का प्रतीक मानने से इनकार करती है। यह व्यक्तियों, राजनीतिक संघर्षों और आर्थिक नीतियों को साथ रखकर एक सुलभ कथात्मक इतिहास बनाती है, साथ ही इसे संतुलित अध्ययन के लिए अन्य आर्थिक इतिहासकारों के कार्यों के साथ पढ़ना चाहिए। न्यू डील, राजकोषीय प्रोत्साहन और रोजगार आंकड़ों पर श्लेज के निष्कर्ष व्यापक अकादमिक सहमति नहीं है। यही विवाद पुस्तक को अनुपयोगी नहीं बनाता, बल्कि उसे बहस के लिए उपयोगी बनाता है। यह पाठक को तैयार उत्तर देने के बजाय नीतिगत सफलता के मानदंडों पर पुनर्विचार करने को प्रेरित करती है। इसीलिए यह सहमति खोजने वाले पाठक से अधिक प्रमाण, परिभाषाओं और वैकल्पिक व्याख्याओं की तुलना करने वाले पाठक के लिए उल्लेखनीय पुस्तक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एमिटी श्लेज, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।